एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूँ आपका मेजबान।
और मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक काफी विवादास्पद फ्रांसीसी विचारक की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरने वाले हैं, मार्क्विस दे साद। नाम सुनते ही कई लोग थोड़ा असहज हो जाते हैं ना?
बिल्कुल बिल्कुल, और यही आज की चर्चा को दिलचस्प बनाता है। हम सीधे साद के लेखन में नहीं कूद रहे हैं, जो काफी ग्राफिक हो सकता है।
हाँ, वो तो है।
बल्कि हम जॉन फिलिप्स नाम के एक विद्वान हैं, उनके विश्लेषण के जरिए साद को समझने की कोशिश करेंगे। फिलिप्स ने साद को सिर्फ एक बदनाम हस्ती नहीं माना।
सही कहा, उन्होंने साद को एक गंभीर, भले ही बहुत परेशान करने वाले दार्शनिक और साहित्यिक चिंतक के तौर पर देखा है। ये एक अलग नजरिया है।
हाँ, और ये सवाल भी उठता है कि आज, मतलब 200 साल से भी ज्यादा हो गए, साद पर बात करना जरूरी क्यों है?
मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि उनके विचार स्वतंत्रता, नैतिकता, सत्ता, इंसान का स्वभाव, इन सब की सीमाओं पर वो इतने तीखे सवाल उठाते हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
और जॉन फिलिप्स का जो विश्लेषण है, वो इन मुश्किल सवालों को समझने में हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए इस थोड़ी चुनौतीपूर्ण लेकिन जरूरी चर्चा में उतरते हैं।
बिल्कुल, देखते हैं फिलिप्स क्या कहते हैं।
तो सबसे पहले, ये जॉन फिलिप्स हैं कौन? मतलब साद जैसे जटिल व्यक्ति का विश्लेषण करने के लिए क्या खासियत है उनमें?
देखिए, जॉन फिलिप्स फ्रांसीसी साहित्य, आलोचनात्मक सिद्धांत और दर्शन के एक जाने माने विद्वान हैं। मतलब उनका अकादमिक क्षेत्र काफी विस्तृत है।
हाँ, और उनकी विशेषज्ञता खासतौर पर 18वीं सदी के फ्रांसीसी विचार, यानी साद का दौर, और साथ ही 20वीं सदी के उत्तर संरचनावाद तक है।
उत्तर संरचनावाद, ये शब्द सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है यहाँ?
आसान भाषा में कहें तो फिलिप सिर्फ ये नहीं देखते कि साद ने क्या कहा, बल्कि ये भी देखते हैं कि कैसे कहा।
अच्छा,
वो साद की भाषा, उनके लिखने की शैली, कहानी कहने के तरीके, इन सबको दार्शनिक औजारों की तरह देखते हैं। वो सिर्फ कहानी नहीं पढ़ रहे, वो कहानी के पीछे के ढांचे को समझ रहे हैं।
ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि फिलिप साद को सिर्फ उनकी जिंदगी या किसी मनोविज्ञानिक केस स्टडी की तरह नहीं देखते, वो उनके लेखन की बनावट, भाषा के खेल और तर्कों का विश्लेषण करते हैं।
बिल्कुल, वो मानते हैं कि साद ने जिस तरह से अपनी कहानियां गढ़ीं, जिस तरह से अपने किरदारों के बीच बहसें करवाईं, वो अपने आप में एक दर्शन पेश करने का तरीका था।
और शायद यही वजह है कि फिलिप्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि साद क्यों आज भी इतने विवादित और चर्चित हैं। वो सिर्फ सदमा पहुंचाने के लिए नहीं लिख रहे थे, है ना?
हाँ, फिलिप्स के अनुसार उनके पीछे एक सोची समझी, यद्यपि बहुत ही विध्वंसक विचार प्रणाली थी।
अच्छा, तो फिलिप्स का मुख्य उद्देश्य क्या है इस विश्लेषण में?
जैसा आपने शुरू में कहा, वो साद को उनसे जुड़े मिथकों और एक तरह के कार्टून जैसे चरित्र से बाहर निकालना चाहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि साद की जिंदगी, उनके काम और उनकी दार्शनिक सोच का एक साफ, तर्कसंगत लेकिन फिर भी सुलभ विश्लेषण दें।
हाँ, और जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये समझना जरूरी है कि फिलिप्स कहीं भी साद का बचाव नहीं कर रहे हैं, वो उनका महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल नहीं, उनका मकसद अलग है। वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि साद एक कट्टरपंथी विचारक के तौर पर क्यों महत्वपूर्ण है। एक ऐसा विचारक जिसने पश्चिमी सभ्यता की नींव, मतलब धर्म, कानून, परिवार, नैतिकता, इन सब पर हमला करने के लिए साहित्य को हथियार बनाया।
तो फिलिप्स कहते हैं कि हमें साद के विचारों की गंभीरता को समझना होगा, चाहे वो हमें कितने ही बुरे क्यों न लगे, अनदेखा करने से काम नहीं चलेगा।
हाँ, वो हमें एक सफर पर ले जाते हैं, 18वीं सदी के फ्रांस के माहौल से शुरू करके साद के साहित्यिक नरक के बिल्कुल केंद्र तक।
और इस सफर में वो साद के सबसे अहम और बदनाम कामों का गहराई से अध्ययन करते हैं, जैसे
जस्टीन
और उसकी बहन की कहानी जूलियट,
वो भयानक किताब द 120 डेज ऑफ सोडम,
और सीधी सीधी दार्शनिक बहस वाली फिलॉसफी इन द बेडरूम।
फिलिप्स दिखाते हैं कि कैसे साद एक ऐसी दुनिया रचते हैं जहां नेकी को हमेशा सजा मिलती है,
हमेशा,
और बुराई, क्रूरता, स्वार्थ, इन सबको इनाम मिलता है। ये दुनिया की हमारी समझ को बिल्कुल पलट देता है।
तो चलिए फिलिप्स के विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं, साद की जिंदगी और उस दौर से शुरू करते हैं।
हाँ, स्रोत बताते हैं कि साद फ्रांस के एक बहुत ऊंचे कुलीन परिवार में पैदा हुए थे, मिलिट्री में भी रहे, लेकिन फिर यौन कांडों का एक लंबा सिलसिला चला,
जिसके कारण उन्हें अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 30 साल, जेलों और पागलखानों में गुजारना पड़ा, पहले राजा के जमाने में, फिर नेपोलियन के वक्त में। और यहीं फिलिप्स का एक बहुत अहम तर्क आता है। वो कहते हैं कि सात का लेखन उनके जेल के अनुभव से गहराई से जुड़ा है, उसे अलग करके नहीं देखा जा सकता।
ये थोड़ा अजीब लगता है ना, जेल और लेखन का ऐसा सीधा संबंध।
हाँ, पर फिलिप समझाते हैं कि जेल एक तरह से साध की प्रयोगशाला बन गई। जब उनकी शारीरिक आज़ादी छिन गई तो उन्होंने अपनी कल्पना और बुद्धि का इस्तेमाल करके विचारों की आज़ादी की हदें खोजना शुरू कर दिया।
मतलब एक तरह की वैचारिक बगावत।
बिल्कुल, उस जमाने के पाखंडी समाज के खिलाफ एक गुस्सा जो बाहर नैतिकता का ढोंग करता था और अंदर हर तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त था। जेल के अकेलेपन और गुस्से ने उनके लेखन को एक दार्शनिक उग्रता दी।
अच्छा, अब आते हैं उनके सबसे मशहूर उपन्यास जुस्टीन, यानी सदाचार की बदकिस्मती। इस पर फिलिप्स इसे कैसे देखते हैं?
फिलिप्स इसे उस जमाने के जो भावुक उपन्यास होते थे ना, जिनमें दिखाते थे कि अंत में नेकी की जीत होती है,
हाँ हाँ,
उसकी एक बहुत ही क्रूर पैरडी या मजाक की तरह देखते हैं। साध उस विचार को बिल्कुल उलट देते हैं।
कहानी जस्टिन नाम की एक लड़की की है जो बहुत नेक है, पवित्र है।
हाँ, और वो ईमानदारी से जीने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन समाज के हर तबके के ताकतवर लोग, चाहे वो अमीर हों, जज हो, पादरी हों, सब उसका भयानक शोषण करते हैं, उसे यातनाएं देते हैं।
तो फिलिप्स के मुताबिक साध का तर्क क्या है यहाँ?
साध का तर्क साफ है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ ईश्वर नहीं है या चुप है, वहाँ नैतिकता एक बोझ बन जाती है। नेकी आपको बचाती नहीं, बल्कि शोषण का शिकार बनाती है। जस्टिन की अटूट नेकी ही उसके दुखों का कारण बन जाती है। बहुत ही निराशाजनक नजरिया है।
सचमुच। और फिर आती है जूलियट, जस्टिन की बहन, जो बिल्कुल उल्टा रास्ता चुनती है।
हाँ, जूलियट जानबूझकर बुराई का रास्ता चुनती है। स्वार्थ, क्रूरता, अपराध, सब कुछ। और मजे की बात यह है कि वो कामयाब होती है, अमीर, ताकतवर बन जाती है।
तो जूलियट एक तरह से साध के आदर्श का प्रतीक है, वो लिबर्टीन।
फिलिप्स के अनुसार, हाँ, जूलियट उस आज़ाद, स्वच्छंद व्यक्ति का प्रतीक है जो प्रकृति के विनाशकारी नियमों के साथ खुद को जोड़कर परम स्वतंत्रता और सफलता पाती है। इस बड़े उपन्यास में साध अपना तथाकथित सकारात्मक दर्शन पेश करते हैं।
सकारात्मक दर्शन बुराई का?
हाँ, उनके नज़रिए से सकारात्मक, जिसमें कट्टर नास्तिकता, सहानुभूति का पूरी तरह से त्याग, दूसरों को सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का साधन मानना और दर्द के जरिए आनंद खोजना, ये सब शामिल है। जूलियट की कहानी मानो बुराई की शिक्षा देती है।
और फिर है वो काम जो शायद सबसे ज्यादा कुख्यात है, द 120 डेज ऑफ सोडम। अधूरा है पर भयानक माना जाता है। फिलिप्स इसे सिर्फ पोर्नोग्राफी मानते हैं या कुछ और?
नहीं, फिलिप्स का तर्क इससे ज्यादा गहरा है। वो कहते हैं कि इसे उपन्यास की तरह नहीं, बल्कि एक अंधेरे व्यवस्थित विश्वकोश की तरह पढ़ना चाहिए, जैसे कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण कर रहा हो।
विश्वकोश किस चीज का?
हर सोची जा सकने वाली यौन विकृति का एक ठंडी, लगभग नैदानिक लिस्ट। फिलिप जोर देते हैं कि इसका असली आतंक सिर्फ उन भयानक कामों में नहीं है, बल्कि उस ठंडे, तर्कसंगत, व्यवस्थित तर्क में है जिससे इन कामों को जायज ठहराया जाता है।
ओह,
ये मानो मानवता के शून्य बिंदु का प्रतीक है, जहां सहानुभूति पूरी तरह खत्म हो चुकी है।
और आखिर में फिलॉसफी इन द बेडरूम, ये साध का सबसे छोटा और शायद सबसे सीधा दार्शनिक काम माना जाता है। इसमें एक युवा लड़की यूजीनी की शिक्षा का वर्णन है।
हाँ, यौन और दार्शनिक शिक्षा दोनों। और फिलिप्स यहाँ इस किताब के केंद्रीय तर्क पर ध्यान खींचते हैं कि एक सच्ची राजनीतिक क्रांति, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, तभी पूरी हो सकती है जब उसके साथ एक नैतिक क्रांति भी हो।
और इसका सबसे विवादास्पद हिस्सा वो राजनीतिक पर्चा है ना?
हाँ, फ्रांसीसी, अगर तुम गणराज्यवादी बनना चाहते हो तो एक और कोशिश करो। बिल्कुल, इसमें साध तर्क देते हैं कि आज़ादी पर बना गणराज्य पुरानी ईसाई नैतिकता की जंजीरों को बनाए नहीं रख सकता। वो पूर्ण यौन स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, जिसमें अनाचार और बलात्कार जैसी चीजें भी शामिल हैं, ये कहते हुए कि ये प्राकृतिक इच्छाएं हैं जिन्हें राज्य को दबाना नहीं चाहिए।
ये तो बहुत ही चरम विचार है।
हाँ, फिलिप्स इसे एक व्यावहारिक राजनीतिक कार्यक्रम से ज्यादा एक कट्टरपंथी उकसावा मानते हैं, एक ऐसा उकसावा जो नए गणतंत्र के आज़ादी के दावों के विरोधाभासों को उजागर करने के लिए रचा गया था।
तो इस पूरे विश्लेषण से साध के विचारों के मुख्य सूत्र क्या निकलते हैं? पहला आपने बताया ज्ञानोदय के तर्क की आलोचना, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है।
हाँ, ये दिलचस्प है। फिलिप्स कहते हैं कि साध तर्क के दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो ज्ञानोदय के ही सिद्धांतों को, जैसे भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, ईश्वर का इनकार उनके भयानक तार्किक अंत तक ले गए।
और नतीजा क्या निकला?
एक ठंडी बेमतलब दुनिया जहां कोई ईश्वरीय नियम नहीं, कोई नैतिक निरपेक्षता नहीं, तो फिर सबसे ताकतवर का कानून ही एकमात्र तर्कसंगत कानून बचता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला तर्क।
दूसरा मुख्य सूत्र आपने बताया था प्रकृति को एक अनैतिक और विनाशकारी शक्ति के रूप में देखना।
हाँ, ये उस समय के रोमांटिक विचारों के बिल्कुल खिलाफ था। रूसो जैसे लोग प्रकृति को अच्छा मानते थे। साद ने कहा, नहीं, प्रकृति तो लगातार बनाने और बिगाड़ने का एक अराजक क्रूर इंजन है।
मतलब हत्या, क्रूरता, ये सब भी प्राकृतिक है
साद के अनुसार? हाँ, उतने ही प्राकृतिक जितना जन्म लेना। इसलिए साध का लिबर्टीन जब क्रूर होता है तो वो प्रकृति की नकल कर रहा होता है, उसके खिलाफ नहीं जाता। ये उनके दर्शन का आधार है।
तीसरा अहम विचार था व्यक्ति की पूर्ण संप्रभुता, मतलब अपने ऊपर पूरा अधिकार।
बिल्कुल, साध के नायक का लक्ष्य है पूर्ण आजादी, सभी बाहरी बंधनों से, कानून, समाज, दूसरों की भावनाएं, सबसे।
और इसके लिए सहानुभूति और दया को छोड़ना पड़ता है।
हाँ, उन्हें कमजोरी माना जाता है। असली खुशी अपनी इच्छा को पूरी तरह जाहिर करने में है, चाहे दूसरों को कितना भी नुकसान हो। ये आज के सेल्फ फर्स्ट कल्चर पर भी सोचने को मजबूर करता है ना, कि इसकी सीमा क्या हो।
चौथा, नास्तिकता। एक बुनियादी सिद्धांत के तौर पर ये तो उनके लेखन में बहुत साफ दिखता है।
बहुत ज्यादा। उनके लिए ईश्वर का विचार ही सबसे बड़ी गलती है, खासकर ईसाई धर्म उनके अनुसार दुख, दमन और पाखंड का स्रोत है। फिलिप्स दिखाते हैं कि साध के लिए सच्ची मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक ईश्वर का विचार दिमाग से मिट ना जाए।
और पांचवा, वो जटिल गड़जोड़ सत्ता, आनंद और पीड़ा का, जिससे सैडिज्म शब्द बना।
हाँ, फिलिप्स साफ करते हैं कि साध की दुनिया में सेक्स और पावर अलग नहीं है। परम आनंद सिर्फ शारीरिक सुख नहीं, बल्कि दूसरे पर पूर्ण प्रभुत्व का आनंद है, उसे अपनी मर्जी की वस्तु बना देने का सुख।
और दर्द इसमें एक जरिया है।
हाँ, दर्द इस प्रभुत्व को स्थापित करने का सबसे ताकतवर जरिया है। पीड़ित की पीड़ा लिबर्टन की शक्ति का सबूत बनती है। ये सिर्फ हिंसा नहीं, एक दर्शन है।
फिलिप साध के लेखन से कुछ ऐसे विचार या उद्धरण भी सामने लाते हैं जो उनके दर्शन का निचोड़ है, जैसे ये, ईश्वर का विचार एकमात्र ऐसी गलती है जिसके लिए मैं मानव जाति को माफ नहीं कर सकता।
ये उनके कट्टर नास्तिकवाद को दिखाता है। उनका मानना था कि धर्म ही आजादी पर सबसे बड़ा बंधन है। ईश्वर का आविष्कार कोई मासूम तसल्ली नहीं, बल्कि इंसानी सोच की बुनियादी खराबी है जो दमनकारी नैतिकता को जन्म देती है।
एक और है, फिलॉसफी इन द बेडरूम से। क्रूरता और कुछ नहीं बल्कि उस मनुष्य की ऊर्जा है जिसे सभ्यता ने भ्रष्ट नहीं किया है, इसलिए ये एक गुण है, अवगुण नहीं। ये तो वाकई चौंकाने वाला है।
बिल्कुल, ये नैतिकता को पूरी तरह उलट देता है। वो तर्क देते हैं कि सभ्यता हमें कमजोर करती है, प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की है, तो क्रूरता ताकत का संकेत है, कमजोरी का नहीं। इसे मानना बहुत मुश्किल है।
जस्टिन में एक किरदार कहता है, दूसरों की पीड़ा एक ऐसी अनुभूति है जो हमें हमारी अपनी शक्ति की भावना जगाती है, और ये मानव हृदय को ज्ञात सबसे मधुर आनंद है।
ये सैडिज्म की मनोवैज्ञानिक जड़ है। आनंद सिर्फ काम से नहीं, उसके मतलब से मिलता है, दूसरे को नकार कर अपनी शक्ति को महसूस करना। फिलिप्स इसे साध की इंसानी प्रेरणा की समझ का केंद्र मानते हैं।
और एक आखिरी, पुण्य या वर्च्यू से ज्यादा कुछ नहीं है, और इसके नियम केवल उन्हीं के लिए उपयोगी हैं जिनके पास दंड से मुक्ति के साथ उनका उल्लंघन करने की शक्ति है।
ये साफ करता है कि साध कैसे मानते थे कि नैतिकता सत्ता के लिए काम करती है, इंसाफ के लिए नहीं। सदाचार एक सामाजिक रचना है, कोई प्राकृतिक नियम नहीं। सत्ता कैसे काम करती है, इस पर ये एक बहुत कड़वी टिप्पणी है।
जाहिर है, इन विचारों को सीधे जिंदगी में लागू करना तो
भयानक होगा। इन बातें समझ आ सकती हैं। पहली, ये हमें अपनी नैतिकता की नींव पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है।
मतलब हम क्यों मानते हैं कि कुछ चीजें गलत हैं? क्या ये सिर्फ आदत है या कोई ठोस कारण है?
बिल्कुल, साथ के सवाल हमें रटी रटाई बातों से आगे सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद हम अपनी नैतिक मान्यताओं को और मजबूती से समझ पाएं।
दूसरा, ये अत्याचार और शोषण के पीछे के तर्क को समझने में थोड़ी मदद कर सकता है। यह देखना कि कैसे तर्क का इस्तेमाल जुल्म को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है।
हाँ, ये उन शासनों या व्यक्तियों के मनोविज्ञान को समझने के लिए एक काला लेंस जरूर देता है जो अक्सर अपने कामों को सही ठहराने के लिए अजीब तर्क गढ़ते हैं।
तीसरा, ये किसी भी विचारधारा को चरम पर ले जाने के खतरों को दिखाता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों न लगे शुरुआत में।
सही कहा। साध का दर्शन दिखाता है कि जब एक सिद्धांत जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिना किसी संतुलन के आखिरी हद तक खींचा जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। ये हर कट्टर विचारधारा के खिलाफ एक चेतावनी है।
और आखिर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल, कला की सीमाएं क्या हों, साध का काम इस बहस के केंद्र में रहा है।
हाँ, क्या समाज को ऐसी कला की इजाजत देनी चाहिए जो इतने विकृत विषयों को टटोलती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अभिव्यक्ति की आजादी और नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री के बीच रेखा कहाँ है। ये आसान सवाल नहीं है।
तो जॉन फिलिप्स के इस विश्लेषण से सबसे बड़ा सबक क्या है?
शायद ये कि हमें अपने राक्षसों का, यानी मुश्किल और डरावने विचारों का सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। साध इतिहास का कोई भूला बिसरा कोना नहीं है, बल्कि एक अहम विचारक है। भले ही भयानक हो, वो आजादी और तर्क के आधुनिक वादे की परछाई को दिखाते हैं।
फिलिप्स का विश्लेषण हमें साध को सिर्फ एक पोर्नोग्राफर से आगे बढ़कर अतिवाद के एक दार्शनिक के रूप में देखने का मौका देता है।
और जिस शांति और तर्क से वो इतने विस्फोटक लेखन का विश्लेषण करते हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है।
बिल्कुल। और आखिरकार साध के सवाल सत्ता, आजादी, इंसानी स्वभाव के बारे में वो आज भी उतने ही प्रासंगिक और बेचैन करने वाले हैं। उन्हें समझना जरूरी है, इसलिए नहीं कि हम उनसे सहमत हो।
हाँ, बल्कि इसलिए कि वे हमें उन चीजों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
और शायद यही अंतिम विचार है। अगर साध की तरह किसी भी विचार को, चाहे वो कितना भी नेक क्यों ना लगे, बिना किसी नैतिक रोक टोक के उसकी चरम सीमा तक ले जाया जाए, तो क्या वो भी विनाशकारी नहीं बन सकता?
ये वाकई सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।